राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हमको घर बैठे भागवत को सुनने का शुभ अवसर करुणा के करुणा की करुणा से ये मिल रहा है। तो ये हमारे सारा सत्संग जो वृतासुर का वर्णन है, ये भी देवताओं के ऊपर आई हुई आपदा थी और भगवान के योजना से, कृपा से समाप्त हो गई। तो हमारे इस सत्संग का जो पुण्य फल हो वो विश्व के शांति के लिए, महामारी से मुक्ति के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हैं। छठा स्कंद श्रीमद् भागवत का 19 अध्यायों का मुख्य रूप से इसमें भागवत का विषय है पोषण। पोषण का मतलब है कि भगवान जब सृष्टि करते हैं तो उसका पालन पोषण करते हैं, उसका रक्षण करते हैं। रक्षण और पोषण के अंतर्गत रोग की दवा की भी जरूरत है, छांटी की भी जरूरत है और वृद्धि की भी जरूरत है। जैसे बगीचा लगाता है माली, तो उसके अंदर खाद भी डालता है, पानी भी देता है और कहीं गैर जरूरी कुछ पौधे होते हैं उनको निकालता भी है। तो ये दोनों पोषण और रक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो इस छठे स्कंद में भगवान कैसे पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं, उसका वर्णन पहले 3 अध्यायों में तो भगवान के नाम से अजामिल का कैसे उद्धार हुआ इसका वर्णन है। उसके बाद भगवान के दर्शन से दक्ष, जिसने शंकर जी का अपमान किया और बकरे का सर उसको लगा जिससे उसको लज्जा आई, अघमर्षण नाम के स्थान पे विंध्या पर्वत में बड़ी तपस्या करके भगवान का दर्शन किया, तो नाम से फिर रूप से कैसे भगवान ने पोषण किया दक्ष का, उसको फिर प्रचेताओं के पुत्र के रूप में दोबारा दक्ष क्षत्रिय पैदा हुआ, पहले ब्राह्मण था, और फिर दक्ष की प्रवृत्ति मार्ग का पोषण किया, नारद के निवृत्ति मार्ग का पोषण किया, नारद को साधु सब जगह सबके हित के लिए भ्रमण करने के लिए और दक्ष की कन्याओं से सृष्टि करने का भगवान ने पोषण किया। उसके बाद नाद से इंद्र का पोषण भगवान ने कैसे ब्रह्म नारायण कवच से किया, ये नाद है, कवच है। तो यहाँ कुछ शिक्षाएं मिलती हैं इस वृतासुर को के प्रसंग को शुरू करने से पहले। पहली शिक्षा ये है, जो जैसे ये प्रश्न शुरू होता है, इंद्र को अपने पद का, प्रतिष्ठा का अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, बड़े देवताओं के समाज में इंद्र आसन के ऊपर बैठा था और अपना ही मार्गदर्शन गुरु बृहस्पति सभा में पधारे, इंद्र ने देखा अनदेखा करा, मुंह फेर लिया और उनका स्वागत नहीं किया, ये इंद्र के द्वारा गुरु का अपमान हो गया। तो पहला तो ये शिक्षा हम सबको लेनी चाहिए कि गुरु वर, गुरु जन, वरिष्ठ साधु संत वैष्णव उनका सम्मान हर हाल में करना चाहिए। पद प्रतिष्ठा का परित्याग करके साधु के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। इंद्र जैसे देवता ने भी अपने ही गुरु बृहस्पति के आने के ऊपर उठ के उनका स्वागत नहीं किया, ऐसे तो शास्त्र का नियम है। अपने से बड़े माता पिता हो, गुरुवर हो, ब्राह्मण हो, ऐसे कोई आए तो उठ के उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि नहीं उठने से प्राण निकल जाते हैं। और भी नीति शास्त्र कहता है जो बड़ों का, गुरु वर्ग का, साधु संतों का सम्मान नहीं करता तो उसकी आयु, बल, यश, विद्या नाश होती है। और जो इनका सम्मान करता है, आदर देता है, उनकी आयु, बल, यश, विद्या में वृद्धि होती है, बढ़ती है। तो ये इंद्र के द्वारा हो गया अपराध। और गुरु तो बड़े बुद्धिमान थे, बृहस्पति तो वैसे बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अदृश्य हो गए और इंद्र को नहीं मिले। इंद्र ने पश्चाताप भी किया, अपने को कोसा कि क्या मैं अपने गुरु का आदर नहीं कर सका, कितना मैंने धृष्टता का कार्य किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, गुरु नहीं मिले तो अपने से बड़े के शरण में जाके प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान के पास गए कि अब मैं क्या करूं, इस स्थिति में मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मेरे द्वारा गुरु का अपमान हो गया, गुरु मिल नहीं रहे। और ये समाचार तो असुरों को मिल गया, और असुरों को जब ये समाचार मिल गया तो उन्होंने कहा, जब
किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर।
हरे कृष्णा।
अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर।
हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं तो आंखें बंद किया था, अभी देखा। ठीक है, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उल्टा है, उल्टा है, वो वाला साइड ऊपर जाएगा जिसमें नाक का निशान है ना, कहाँ है देखो, थोड़ा ऐसे होगा, थोड़ा ऐसे ऊपर भी होगा थोड़ा। हाँ यहाँ ठीक है, इसको हाथ नहीं लगाना आगे से। हरे कृष्णा, ये हमारा नेट चल रहा है, देखो
बंद करके चालू करके रखते,
देखो ये नहीं जा रहा है, बीच में रुक गया सारा हमारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहाँ रह गया कुछ मालूम? कहाँ रुक गया था मालूम नहीं है। जो भी है कितना हुआ था?
मंगलाचरण तक ही हुआ था।
अरे मैं तो 15 मिनट कथा कर दी। चलो जो हरी इच्छा। मैं तो आंखें बंद थी, मैं देखा नहीं। हरे कृष्णा। जो भी है, छठा स्कंद 19 अध्यायों में पोषण का वर्णन है कि भगवान कैसे पोषण करते हैं। जब सृष्टि करते हैं, जैसे बगीचा माली लगाता है तो पानी भी देता है, खाद भी देता है, छटाई भी करता है, कटाई भी करता है, ऐसे भगवान इस सृष्टि में किसी को रख के वृद्धि करके उसका भला करते हैं और किसी का पोषण उसको काट के भी करते हैं। तो दोनों हालत में भगवान पोषण ही करते हैं, सबका हित ही करते हैं। पहले 3 अध्यायों में नाम से भगवान ने अजामिल का कैसे पोषण किया, फिर दक्ष के बकरे के सर से लज्जा आने लगी तो भगवान ने रूप से कैसे पोषण किया, और उसके बाद नारद का पोषण किया, दक्ष का पोषण किया, और फिर इंद्र का नारायण कवच के शब्द से कैसे पोषण किया। इस प्रसंग के अंतर्गत हमारा वृत्तासुर का वर्णन आएगा। हमने शुरू में ये कहा था कि ये वृत्तासुर की कथा भी एक बड़ी आपदा देवताओं के ऊपर आई हुई थी और भगवान ने उनकी आपदा से रक्षा किया। तो ये हमारा सत्संग जो वृत्तासुर का, भागवत का जो भी चलेगा, जितने दिन भी चलेगा, इसका हम संकल्प करके फल विश्व के ऊपर आई हुई आपदा, इस करुणा के कहर से मानव मातर की रक्षा हो, भक्तों की रक्षा हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इस सत्संग का जो है वो फल भगवान को अर्पण करेंगे, ऐसा। जी हेलो, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
हाँ जी, ठीक है ना? तो ठीक है। तो आप बात ये कर रहे थे, हमने बात यहाँ तक,
उनकी तरफ से इंटरनेट की प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी तरफ से ही धीरे हो रहा है,
हमारी तरफ से धीरे हो रहा है।
म्यूट हो गए, मैं म्यूट कर रहा
हूँ। हरे कृष्णा
जी, प्रभु जी आवाज आ रही।
तो अब हम बात कर रहे थे कि इंद्र के द्वारा अपने गुरु का अनादर हो गया, वो बड़े पद और प्रतिष्ठा देवताओं से घिरा हुआ बैठा था और बृहस्पति गुरुदेव के आने के ऊपर आदर नहीं किया, देखा अनदेखा किया। ये पहली इस प्रसंग की शिक्षा है कि अपने से बड़े गुरु वर्ग संत साधु वैष्णव का सम्मान करने के लिए आदर देना चाहिए। और इंद्र के द्वारा ये कार्य नहीं हुआ, गुरु अदृश्य हो गए, इंद्र ने पश्चाताप किया और अपने से बड़ों का शरण लिया, तो अपराध हो गया। तो असुरों ने देखा कि जब गुरु रूठ गया तो फिर देवताओं को हराना आसान है, इतना तो असुरों को भी पता था। और उस वक्त इंद्र प्रेरणा लेने के लिए ब्रह्मा जी भगवान के पास गए। आगे उन्होंने एक ही बात की कि जब तक आपके पास अपना गुरु नहीं है, पुरोहित नहीं है, पुरोहित का मतलब है पहले जो आपका हित करे, यजमान का पहले हित करे वो पुरोहित। ऐसे महाभारत में कथा आती है कि पांचों पांडव भटक रहे थे, जब लाक्षागृह से बच के निकले थे और बहुत दुखी माता कुंती के साथ भटक रहे थे तो गंगा के तट पे इनको चित्र रथ गंधर्व मिला और गंधर्व ने की अर्जुन से मैत्री हुई और उसने कहा कि आपके संकट का कारण है कि आपका पुरोहित नहीं है, कुल आपका गुरु नहीं है, आप उसका वर्ण करोगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा, संकट समाप्त हो जाएगा। और पांडवों ने धौम्य को, ऋषि धौम्य को अपना पुरोहित के रूप में वर्ण किया और जैसे ही ये कार्य हुआ द्रुपद नगर में जाके द्रौपदी को जीता और वापस पांडवों को धृतराष्ट्र महाराज ने विदुर को भेज के मंगाया और उनको हस्तिनापुर का राज मिला। तो ये बहुत बड़ी विशेष बात है कि जिसको जीवन में पुरोहित नहीं है, पहले हर एक कुल को अपना पुरोहित हुआ करता था, गुरु हुआ करता था, जो उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन का ध्यान रखा करता था। आधुनिक युग में ये प्रक्रिया और ये प्रणाली समाप्त हो गई है। संसार में संकट का सबसे बड़ा कारण एक ये है कि आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला, हित करने वाला, पाप से बचाने वाला अभी किसी के परिवार के पास कोई पुरोहित नहीं है, साधु संत नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ा संकट संसार के ऊपर हमेशा मंडलाता रहता है। तो इंद्र को जब कहा गया कि आप पुरोहित कर लो, अब गुरु जब तक मिले उसको जाके क्षमा याचना मांगो तब तक आप पुरोहित करो, लेकिन इस वक्त आपको असुरों के प्रभाव से बचाने के लिए विश्वरूप जो तुष्टा प्रजापति का पुत्र है, तुष्टा आदित्य है, आदित्य माता के बेटों को आदित्य कहते हैं, दित्ति के बेटों को दैत्य कहते हैं, दानों के बेटों को दानव कहते हैं और जो देवताओं से वैर रखे उसको असुर बोलते हैं, और राक्षस तो इन सबसे अलग है जो मानव को खा जाता है। तो ये अलग अलग नाम है, जैसे सुर कहते हैं देवता को और जो उनके विपरीत हो उसको असुर कहते हैं। पद्म पुराण में तो है विष्णु भक्तः देवताः, जो भगवान विष्णु के अनुयायी हैं वो देवता है, तत् विप्रियः असुराः, जो उसके विपरीत हैं वो असुर है। इसका मतलब असुर वो होते हैं जो अन्य देवी देवताओं को संभवतः पूजते हो लेकिन भगवान विष्णु के विपरीत होते हैं, उनसे द्वेष करते हैं। तो असुरों तो आदित्य का मतलब आदित्य के बेटे, ये 12 आदित्य देवता हैं जिसमें सूर्य नारायण आदित्य है, उसका नाम भी आदित्य है, और आदित्य नाम अहम विष्णु, भगवान ने कहा आदित्यों में मैं वामन देव हूँ, ये विष्णु आदित्य का पुत्र वामन देव के रूप में प्रकट हुआ है। तो तुष्टा के बेटे विश्वरूप को इंद्र देवताओं के साथ गए और उसको कहा कि हमारे पुरोहित हो जाओ। विश्वरूप ने कहा पुरोहित होना किसी का पूजा पाठ कराना, उसके कर्म उठाना है, ये काम मैं नहीं करना चाहता हूं। जो उन्नत विप्रवर है, ब्राह्मण है, वेदज्ञ शास्त्रज्ञ है, उनको तो खेत में किसान अपना सारा सामान उठा के जाए, बाकी कुछ अन्न के दाने मिल जाएं, अथवा अनाज की मार्केट में सब लोग अपनी बोरियां भर लें, गिरा हुआ कुछ मिल जाए उसके ऊपर अपना निर्वाह कर लेना चाहिए, तो कोई दोष नहीं लगेगा, नहीं तो जिसका अन्न खाएगा उसका कर्म तो उठाना ही पड़ेगा। और अपने पुण्य को, अपने कमाई को, अपने साधन को उनको देना पड़ता है, ऐसा शास्त्र का विधान है। राजा जिसके राज में रहते हैं छठा हिस्सा तो हमारे जप तप का साधन का उस राजा को मिलता है, और जिस जो भोजन कराता है, अन्न जिसका हम पाते हैं उसको भी अपने भजन का, भोजन का कुछ भाग देना पड़ता है, ऐसा शास्त्र का विधान है। तो पुरोहित को तो हमेशा अपने यजमानों से ही मिले के ऊपर ही निर्वाह करना पड़ता है, इसलिए उसको सबका कर्म भी उठाना पड़ता है। इसलिए विश्वरूप ये काम करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर कहा कि आप तो हमारे ताऊ हैं, इंद्र भी तो आदित्य का पुत्र है, आप भी हमारे अपने सगे हो, आपको नाम भी तो नहीं कर सकता, और विश्वरूप उनका पुरोहित हो गया। और विश्वरूप के पास नारायण कवच की विद्या थी, और ये नारायण कवच की विद्या, ये भगवान के नाम के मंत्रों का उच्चारण करके सारे शरीर को रक्षा के सूत्र में बांध के कवच की तरह पहन लिया जाता है, तो कोई अस्त्र शस्त्र फिर उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन विश्वरूप के पुरोहित होने में एक त्रुटि थी, वो त्रुटि ये थी कि इसकी माँ का जो पिता था, इसका नाने का परिवार था, उनका संबंध असुर कुल से था। तो एक बहुत ये भी बड़ी हमारे नीति शास्त्रों में प्रेरणादायक शिक्षा है। और पुराने जमाने में विवाह से पहले पिता के कुल के कम से कम 5-7 पीढ़ियों का वर्णन करके कौन सा इसका गोत्र है, कौन से ऋषि के गोत्र से इनका पिता आ रहा है, कौन से ऋषि के गोत्र से इनके नाना का परिवार आ रहा है, इसकी माता का गोत्र क्या है, ये सब पहले पता किया करते थे। अब तो ये सारा जो विचार है ये करना ही लोगों ने छोड़ दिया है। तो विश्वरूप ने नारायण कवच तो दे दिया, इंद्र सुरक्षित तो हो गए। एक दिन इंद्र ने देखा कि विश्वरूप यज्ञ के अंदर आहुति दे रहा है देवताओं के लिए, इंद्राय नमः इदम इंद्राय इदम नमः। लेकिन फिर आस्ते से एक आहुति अपने नाना के वंश के असुरों को भी दे रहा है। इंद्र को क्रोध आ गया और क्रोध के वश में इंद्र ने विश्वरूप के तीनों गर्दन काट दिए, जो उसके तीन गर्दन थे। विश्वरूप के तीन गर्दनों का वर्णन है, एक से तो पानी पीता था, एक से सुरापान का अमृत पीता था देवताओं का, क्योंकि देवताओं का पुत्र था। तो उसके तीनों सर काट दिए और इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। और इंद्र ने इस ब्रह्म हत्या को 4 विभागों के बांट के दे दिया और उनको वरदान भी दे दिया। ये अपने आप में एक प्रसंग है। और इसके बाद क्या हुआ अपनी कथा वृत्तासुर में आने के लिए, तुष्टा को जब ये पता लगा कि मेरे पुत्र को पुरोहित बना कर ले गए थे और उसका गर्दन काट के उसकी हत्या कर दी, मैं ऐसा यज्ञ करने जा रहा हूं जिस यज्ञ से इंद्र का शत्रु पैदा होगा और इंद्र का वध करेगा, ऐसा निश्चय करके तुष्टा ने यज्ञ का आरंभ किया। और यज्ञ के आरंभ में एक त्रुटि हो गई। अब ये यज्ञ तो अन्य किसी अच्छे युग में हो रहा था, उस युग में भी इंद्र का शत्रु के बजाय उच्चारण होगा इंद्र जिसका शत्रु हो, केवल एक मात्रा में अंतर हो गया। और परिणाम ये निकला कि उस यज्ञ के अंदर से एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जिन्होंने सब दिशाओं को ढक दिया, इसलिए उसका नाम हो गया वृत्ता। और क्योंकि वो देवताओं का शत्रु के रूप में प्रकट हुआ इसलिए उसको असुर कहते हैं पीछे। लेकिन भागवत के अंदर व्यास देव ने श्री वृत्त लिखा है, असुर पीछे नहीं लिखा है, श्री वृत्त वाच आगे श्री लगाया है और फिर वृत्त लिखा है, असुर नहीं लिखा है। ये रहस्य आगे चल के हम जानेंगे। लेकिन वृत्त और असुर, वृत्त का मतलब ढकने वाला, पर्दा डालने वाला, आवरण करने वाला, सब दिशाओं को ढक दे, बड़ा विराट रूप था, बड़ा भयंकर रूप था। और लाल लाल बाल थे, लंबे से वो बादलों को लगे, इतने आंखें बड़ी और बड़ा भारी भरकम शरीर था। ये वृत्तासुर की उत्पत्ति यज्ञ के कुंड से हुई, लेकिन मंत्र उच्चारण में गलती हो गई, इसलिए कहते हैं कलयुग के अंदर ये यज्ञ वाला कार्य कभी सफल नहीं होता है, क्योंकि न सामग्री वैसी है, न वैसे उच्चारण करने वाले शुद्ध मंत्र हैं। इसलिए कलयुग में तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ का विधि विधान दे दिया है। और ये संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस यज्ञ में मंत्र के उच्चारण में शब्द भले आड़ा टेढ़ा हो जाए तो भी कोई इसका उल्टा असर नहीं होता है, प्रतिवाय नहीं लगता है। लेकिन वेदों के मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि होने से इंद्र कि इंद्र का शत्रु के बजाय इंद्र जिसका शत्रु हो, ये अर्थ निकल गया और वृत्तासुर पैदा हो गया। तुष्टा का बेटा वृत्तासुर यज्ञ से उत्पन्न हुआ है और ये अब असुर सेना का सेनापति हो गया। और फिर देवताओं और असुरों के बीच में एक भारी संग्राम युद्ध शुरू हुआ। तो इस युद्ध का वर्णन इस 11वें अध्याय में, जो हमारा इस वक्त सत्संग का विषय है, ये अध्याय शुरू ही होता है। सुखदेव महाराज कहते हैं, पहला श्लोक सुखदेव महाराज बोल रहे हैं। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, वृत्तासुर जो असुरों का सेनापति था, उन्होंने अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं को उनकी कायरता को देख के, उनके भय को देखकर धर्म का उपदेश देने शुरू किया, क्योंकि वो भय के कारण रणभूमि को छोड़ के भाग रहे थे। लेकिन वो इतने भयभीत थे कि उनके धर्म के उपदेश को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, सुना अनसुना करते जा रहे थे। और दूसरे श्लोक में आगे सुखदेव महाराज कहते हैं, इस मौके का फायदा लेकर देवता भागते हुए असुरों को पीछे से मारने लगे। और इसको देखकर वृत्तासुर को बहुत क्रोध आया और वृत्तासुर उस स्थिति में दोनों के ओर देखकर धर्म की शिक्षा के अनुसार ऐसे बोलने लगा, किम वा उचैति मातो धावदभि पृष्टो अतै नहि भीता वध सलाह्यो न स्वर्गय सुरमानिना। अपने आप को तो आप देवता मानते हो, सुर मानते हो, लेकिन इसको नहीं सराहाया नहीं जाता है। श्लाघ्यो का मतलब इसका कोई ज्यादा बड़ा सराहना नहीं होती है और न ही स्वर्ग मिलता है। किसको? भीतः, जो भागा है, जिसकी पीठ देके डर के मारे भागा है, उसको पीठ से मारने वाले को, पीछे के पीठ के ऊपर बाण चलाने वाले को, अस्त्र शस्त्र चलाने वाले का कहीं कोई सम्मान नहीं होता है, सराहना नहीं होता है, स्वर्ग नहीं मिलता है। देवताओं, आप ये काम कर रहे हो, ये धर्म के विपरीत है। और फिर असुरों को क्या कह रहे थे? अपनों को, अपनों को कह रहे थे, अरे आप अपनी माता का विष्टा हो क्या? जिस पेट से मल मूत्र निकलता है, उसी पेट से तुम निकले हो। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य सारा इस बात के ऊपर है कि पूत और मूत में कोई अंतर नहीं है। अगर वो चाणक्य पंडित की भाषा में, उस पुत्र की क्या जरूरत है, को अर्थ पुत्रेण जाते न, बेटे के जन्म का क्या फायदा है, क्या लाभ है? यो न विद्वान न धार्मिक, जो विद्वान नहीं है और धर्म के मार्ग के ऊपर चलने वाला नहीं है, तो उसका वो किसी काम का नहीं है। काणे न चक्षुषा किम वा, अंधा एक आंख से काणा है तो उसकी आंख का लाभ क्या है? चक्षु पीड़े व केवलम, देखने में तो बुरी लगेगी लेकिन पीड़ा भी देगी, दुख भी देती है। तो अपने असुरों को कह रहे थे वृत्तासुर, ये धर्म की बात कर रहे थे कि ये असुर, आप लोग अपनी माताओं के मलमूत्र हो क्या? वीरता के साथ युद्ध भूमि में छाती के ऊपर अस्त्र शास्त्र सहने के बजाय आप पीठ दिखा के भाग रहे हो। ऐसे जब देखा तो आगे वृत्तासुर को ये उपदेश देने के बाद कहने लगा, यदि वह प्रधने श्रद्धया, अगर युद्ध भूमि में, अब कहते हैं देवताओं को कह रहे हैं, अगर आपको श्रद्धा है, विश्वास है इस युद्ध भूमि में, सारम वा खुशला हृदय, आपके हृदय में अगर हिम्मत है, अरे ओ भागने वालों को मारने वाले कायरो, अग्रे तिष्ट मात्र मेरे सामने थोड़ी देर खड़े होके दिखाओ, नचेदत ग्राम्य सुखे स्प्रहा। ग्राम्य सुखे का मतलब अगर आपको इंद्रियों की तृप्ति के भोग की इच्छा नहीं है, स्वर्ग के भोग की इच्छा नहीं है ना, और वीर होके लड़ने आए हो ना, तो मेरे सामने एक मिनट खड़े होके दिखाओ तो सही। तो उनको ललकारने लगा वृत्तासुर ऐसे, और वृत्तासुर ललकारते ललकारते अब कहते हैं सुखदेव महाराज कहते हैं, ऐसे क्रोध में वृत्तासुर बड़ा शक्तिशाली था और उसका शरीर बहुत बड़ा भारी घर भरकम था, और उसके इसकी गर्जना को सुनकर अचेत हो गए, जीव चारों ओर से बेहोश होके गिर गए, उसकी गर्जना ऐसी थी। और देवताओं ने जब वृत्तासुर के इस गर्जना को सुना जो शेर के समान थी, वो सारे भूमि के ऊपर ऐसे गिरे जैसे उनको वज्र का पात हुआ है। और जैसे ही देवताओं ने आंखें बंद की भय के कारण वृत्तासुर के, वृत्तासुर ने अपना त्रिशूल उठाया और आगे जैसे बढ़ा, धरती कांपने लगी और उनके पांव के नीचे देवता कुचले जाने लगे, जैसे कोई मदमस्त हाथी छोटे छोटे बांस के खेत के अंदर से, बांस के जंगल के अंदर से रुंधता हुआ जा रहा है, ऐसे देवताओं के सेना को अपने पांव से रोंदता हुआ वृत्तासुर आगे बढ़ा है। और जब इंद्र ने वृत्तासुर के इस वीरता को देखा, ऐसे भयानक भाव को देखा, तो इंद्र को भी क्रोध आ गया, और उसके पास जो एक गदा है और बहुत बड़ी खतरनाक गदा है जो अपने निशाने पे जरूर जाती है, उस गदा को वृत्तासुर की ओर उन्होंने रवाना किया। अब आश्चर्य तो ये हुआ कि महाराज परीक्षित, वो शक्तिशाली वृत्तासुर ने इंद्र की उस क्रोध में फेंकी हुई गदा को अपने उल्टे हाथ से पकड़ लिया, और उल्टे हाथ में उसको झपट के पकड़ लिया, और उसी गदा को घुमाकर इंद्र के हाथी एरावत के सर के ऊपर दे मारा। और जैसे गदा का प्रहार हाथी को हुआ, हाथी 14 गज पीछे जाके गिरा और इंद्र उसके नीचे से गिरा, इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया, और इस स्थिति में हाहाकार मच गया। लेकिन वृत्तासुर धर्म के नियम का पालन करते हुए कहने लगा, तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, तुम्हारा वाहन इस वक्त पीड़ा के कारण पड़ा हुआ है, उठो वज्र उठाओ। वृत्तासुर ने युद्ध करना बंद किया, इंद्र ने इस मौके का लाभ लिया, अमृत के अपने हस्त से अपने वाहन ऐरावत को सचेत किया, उसके जो जख्म थे, घाव थे, वो दर्द से उनका समाप्त हुआ। इंद्र उठा, ऊपर उठ के खड़ा हो गया, लेकिन इंद्र को एक संदेह हो गया। क्या संदेह हो गया इंद्र को? इंद्र को संदेह ये हो गया कि अभी अभी ऐसी मेरी भयानक गधा मैंने इसकी ओर फेंकी थी और इसने उस गधा को उल्टे हाथ में पकड़ के मेरे ही हाथी को मार दी, तो वो थोड़ा संकोच में था कि क्या करना चाहिए। तब वृत्तासुर कहने लगे, इंद्र तुम्हारे पास देखो तो सत्तम निरपिंद्र आहाव कामे या रिपुम, तेरा मैं शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तेरे पास वज्र का आयुध है, और ये मत समझो। पहले तो इंद्र को देख के वृत्तासुर को क्रोध आया, क्रोध किस बात का आया? मेरे भाई को विश्वरूप को ले गए थे पुरोहित करके, और उसको बेदर्दी से सर काट दिया, कत्ल कर दिया, स्लाटर कर दिया। अरे दुष्ट, तू ब्राह्मण का हत्यारा है, गुरु का हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है। इन बातों को याद करके वृत्तासुर देखा कि उसके हाथ में वज्र है, फिर भी इसको अपने भाई की याद आई और शोके न मोहे न हसन जगात। एक तो शोक हुआ, मोह हुआ और बहुत हंसी से, जोर से हंसने लगा। और उस हंसने के बाद वृत्तासुर ने कहा अपने गुरु का हत्यारा, ब्राह्मण का हत्यारा, मेरे भाई का हत्यारा, आज मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं अभी तुम्हारे को जमपुरी भेज देता हूं। तुम्हारा ये हृदय जो पत्थर जैसा, पाषाण जैसा हृदय है ना, ये मेरे त्रिशूल से मैं विदीर्ण कर दूंगा और मेरे भाई की ओर मेरा जो कर्जा है वो आज चुका लूंगा, उसका बदला ले लूंगा। आपको केवल इंद्रासन के बचाने की इतनी इच्छा थी कि मेरे भाई की हत्या कर दी। वो निष्पाप था, आत्म साक्षात्कार किया हुआ था और बड़ा योग्य ब्राह्मण था। आपने उसको अपना पुरोहित बनाया था, गुरु बनाया था और वो आपके यज्ञ कर रहा था और उसको आपने निर्दयता से मार दिया। ओ, जैसे पशु को हत्या की जाती है ऐसे आपने उसका हत्या कर दी। आपको कोई लज्जा नहीं है इंद्र, आपके अंदर दया नहीं है। क्या शब्द लिखे हैं, श्री हरि दया कृति भी उजितम त्वम। अरे इंद्र, तुम्हारे अंदर न श्री है, न हरि है, न दया है, न कीर्ति है। अब श्री का मतलब है आपके अंदर कोई, श्री का मतलब धन, मान सम्मान सुंदरता नहीं है। हरि, अरे कोई आपको लज्जा नहीं है, दया नहीं है और कृति भी, और आपकी कोई महिमा नहीं है। उचितम, आप इन सबको छोड़ दिया है। स्वकर्मणा, तुम्हारे काम के द्वारा, पुरुष अधई, ए नीच, अधई पुरुष का मतलब यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं राक्षसों के समान तुमने मानव की हत्या कर दी है। ग्रहयम, इसकी निंदा की जाती है। अब देखो ये मेरा त्रिशूल तेरे शरीर का भेदन करेगा और फिर तेरे इस शरीर को आग भी नहीं जलाएगी और ये गीद इसका मांस खाएंगे, इसको अग्नि भी नहीं जलाएगी। इतना तुम दुष्ट हो कि अग्नि भी पवित्र शरीर को जला सकती है। तुम इतने पापी हो, अपराधी हो कि तेरे शरीर को अग्नि भी नहीं जलाएगी। फिर कहते आप तो, वृत्तासुर कह रहे हैं, अन्यनोते त्वेहे निरसंक्षम अज्ञा, हे मूर्ख, तुम्हारा अगर साथी दूसरे देवता भी तेरी सहायता के लिए अगर आगे बढ़े ना, उन सब का इन त्रिशूल से मैं बलि भैरव को चढ़ा दूंगा और भूत प्रेतों को उनका मांस दे दूंगा खाने के लिए। और ये कहने के बाद वृत्तासुर कह रहे हैं, अथो हरे मे कुलिसेन वीर, हे इंद्र तुम वीर हो, हर्ता प्रत्येव शिरो यदि तत्राणो भूत बलिम विद्याद मनस्वीनाम पाद। अब कहता है इंद्र ऐसे भी हो सकता है, युद्ध है, संभव है कि तुम्हारे हाथों से मैं मारा जाऊं, और अगर किसी कारण से मैं तेरे हाथ से मारा गया तो मैं कहता हूं कि मनस्वी जो है, मनस्वी का मतलब भगवान के भक्त, मनस्वीनाम पादे रजह प्रपत्तस्य, वैष्णो की कृपा हो जाए तो मेरे मरने के बाद मैं भगवान के चरणों को प्राप्त करूंगा। मरने से न डरता हुआ वृत्तासुर कहता है, और प्रभुपाद का तात्पर्य इसमें नरोत्तम दास ठाकुर के श्लोक से है, इच्छय गोसाई यार मोई तारास तान सबर पद रेणु मोर पंच ग्रास। वैष्णव की कृपा से, भगवान के भक्त की कृपा से छारिया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केबे। प्रभुपाद जी लिखते हैं तो यहां मनस्वी नाम पाद रज प्रपतस्य का मतलब है नारद जैसे किसी महान वैष्णव की कृपा मुझे प्राप्त होगी, तुम मुझे मारोगे तो मैं संसार के संकट से मेरे कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा और मैं तो वैष्णव की कृपा से भगवान का चरण पाऊंगा और इंद्र तुम तो यहाँ रहोगे, इस दुनिया में भटकते रहोगे। और फिर आगे कह रहा है वृत्तासुर, सुरेश कस्मा नहिनोस्य वज्रम। अरे सुरेश देवताओं के राजा, तुम इस वज्र से मेरा वध क्यों नहीं करते हो? पूरा स्थिति वरिणा माया अमोघम। ऐसा मत समझना कि तेरी गदा के तरह ये निष्फल चला जाएगा। तुम्हारी गदा मैंने पकड़ के तुझे मार दी थी वापस तेरे हाथी को, तेरे को ये अगर भय है तो इस भय से मुक्त हो जाओ। क्यों मुक्त हो जाऊं? इंद्र कहते हैं क्यों, पहले तो ऐसे नहीं हुआ है। तो कहते हैं गदे वज्र स्यान निष्प्रह कृपणाथेव याचा। ये जो वज्र आपके हाथ में भगवान विष्णु की कृपा और प्रेरणा से तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये निष्फल नहीं होगा। आप निश्चित हो जाओ, तुम्हारी गदा जैसे निष्फल हो गई थी ऐसे ये निष्फल नहीं होगा। इसमें भगवान विष्णु की आशीर्वाद और शक्ति और प्रेरणा है। निश्चित रूप से तुम वज्र का प्रहार करो, इस वज्र के प्रहार से मैं मरूंगा और वैष्णव की कृपा से मैं अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करूंगा। ये भाव बहुत अच्छा है। वृत्तासुर तो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मैं इस असुर योनि से मुक्त होके वापस भगवान की भक्ति में उनकी सेवा में जाऊं। और अब आगे कह रहा है हे इंद्र, आपके हाथ में जो ये वज्र है इसमें भगवान विष्णु की शक्ति भरी हुई है और ये दधीची की तपस्या से उनके हड्डी से, अब आप लोगों को इसका ज्ञान होगा। ननव एष वज्रस्तव शक्र तेजसा। शक्र इंद्र का नाम है, इंद्र को कहते हैं शक्र। शक्र का मतलब 100 यज्ञ करने वाला, सत कर्तु, सत मतलब 100, कर्तु मतलब यज्ञ, जो 100 यज्ञ करता है उसको सत कर्तु कहते हैं। तो इंद्र का छोटा नाम है शक्र। शक्र इस वज्र में बहुत बड़ा तेज है, बड़ा शक्तिशाली है। क्यों? हरे हा, इसमें हरि भगवान विष्णु की प्रेरणा से मिला है और मैं बना किससे है? दधीचे तपसा च तेजतः, दधीची की तपस्या का तेज है इसमें। तो दधीची ऋषि, उसके पास असल में नारायण कवच था, नारायण कवच का ज्ञान दधीची ऋषि के पास था, अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुआ था, संभवतः घोड़े के रूप में दिया था, इसकी अपनी एक कथा है। लेकिन जो भी हो, दधीची से भगवान विष्णु ने कहा कि उनकी अस्थियों को मांग दो, उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ, उस वज्र से वृत्तासुर का वध कर सकोगे। तो दधीची के पास इंद्र हड्डियों को मांगने के लिए गया तो दधीची कहने लगा कि मरने से पहले हड्डियां कैसे दे सकता हूँ, तो तुम क्या समझते हो कि मैं मर जाऊँ? इंद्र ने कहा साधु संत महात्मा परोपकारी होते हैं, हमारे ऊपर संकट आया है, भगवान ने प्रेरणा दी है, आप हमको अपनी अस्थियां दे दीजिए। और दधीची ने एक तीर्थ है नैमिषारण्य के 1.2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, मिश्रित नाम का तीर्थ है, वहां दधीची ऋषि के शरीर के ऊपर दही लगाया हुआ है और गाय उसको चाट रही है और सारा मांस समाप्त होने के बाद हड्डियां इंद्र को दे रहा है और दधीची के शरीर छोड़ने के पाप को धोने के लिए इंद्र ने वहां सारे तीर्थों का आवाहन किया है, इसलिए उस जगह का नाम है मिश्रण तीर्थ। मिश्रण का मतलब सारे तीर्थों का जल उसमें मिश्रित हुआ है, उसमें भी स्नान करने लोग नैमिषारण्य जाते हैं तो पास में मिश्रित तीर्थ जहाँ दधीची का ये एक डायरामा बना हुआ है, एक मूर्ति की तरह बना के रखा है, गाय उसको चाट रही है। तो वृत्रासुर कहता है इसमें भगवान विष्णु की शक्ति है, इसमें दधीची की तपस्या की शक्ति है। तेनैव शत्रुम जहि विष्णु यंत्रितो, तेरा मैं शत्रु तेरे सामने खड़ा हूँ और भगवान विष्णु के दिया द्वारा तुम्हें प्रदत्त दिए गए इस यंत्र, इसका मतलब जो वज्र है, इससे हतो यतो हरिरह विजय श्री गुणायत, जैसे भगवान सदा ही विजयी होते हैं, भगवान ने तुम्हारा पक्ष ले लिया है इसलिए तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारा ये क्या तीन शब्द लिखे हैं, ऐसे ही शब्द लिखे हैं जैसे भगवद गीता के अंतिम श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है भगवद गीता के अंतिम श्लोक में, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो पार्थो धनोधर तत्र श्री विज्ज भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय कहते हैं जहाँ श्री कृष्ण होगा वहाँ विजय होगी, वहाँ श्री होगी, वहाँ सब शुभ कार्य होंगे। तो ये समझ लीजिए यहाँ वही श्लोक का भाव यहाँ दे रहा है कि भगवान विष्णु हरि विजय ही आपकी तरफ भगवान है तो आपकी विजय होगी, श्री होगी, आपका ऑपुलेंस होगा, आपका वैभव होगा, गुण ही सारे अच्छे गुण होंगे। वहाँ कहाँ अच्छे गुण होता है, जहाँ भगवान होता है। और भगवान कहाँ होता है, कोई आपसे हमसे पूछे तो भगवान तो आज अपने नाम के रूप में है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो जो भगवान के नाम का निरंतर जप करता है वो हमेशा भगवान के सानिध्य में रहता है, भगवान के संग में रहता है, भगवान नाम के रूप में। महाप्रभु की कृपा से श्री प्रभुपाद ने इस मंत्र को पूरे विश्व में नारायण कवच की ओर दे दिया है। हरे कृष्णा, अब यहाँ विराम देते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछे इसके जी। अब इसके बाद कल से जो है वृत्रासुर के शिक्षाओं के कुछ श्लोक कल करेंगे, 20 श्लोक के ऊपर हम विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।
सेशन का हमने सोचा था कि कल हम 10 मिनट पहले सिर्फ एक यही सेशन रख लें, आज थोड़ा सा शुरू हुआ है तो कल जैसे 6 बजे अगर हमने सेशन शुरू करना है तो 10 मिनट पहले स्टार्ट करके क्वेश्चन आंसर करके रीकैप हो जाएगा और फिर नेक्स्ट सेशन।
ठीक है, जैसे सबकी इच्छा हो, मैं 20 को 20 से ऐसे आगे कल करेंगे।
ठीक है, ठीक है।
तो किसी को
चेक करना पड़ेगा, अंदर वो मीटिंग का टाइम चेंज रखा है, उससे पहले हो सकता है टाइम डाल चुके हैं ऑलरेडी। एक बार सर
ठीक है, कोई नहीं, 6 बजे शुरू करेंगे।